साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं हो सकती बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो है, और फिर वही आपने जैसे कि कहा कि चाइना का इशू, चाइना ने तो अभी कुछ साल से कुछ अगर मैंने कुछ सख्ती की होगी, लेकिन इंडिया तो पिछले 72 साल से कश्मीरियों को कत्ल कर रहा है। और तीसरी आखिरी बात, अब ये जैसा है ये क्या बात है, ये किस वजह से सिख है ये जो है 2020 का रेफरेंडम कर रहे हैं, हालांकि उन पर उतना जुल्म नहीं हुआ सिवाय 84 के अलावा जितना कि कश्मीरियों पे 72 साल से हो रहा है।
बहुत शुक्रिया। अब आप देखिएगा कि आपने उस भाई साहब ने बल्कि कहा कि इंडिया में है, कोर्स जगहों के नाम बदल भी जाया करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मुग़लों की बहुत सारी मसाजिद हैं वहाँ पे, ये साहब इंडिया में एक स्टेडियम है फिरोज़ शाह कोटला स्टेडियम, ये साबिक मुसलमान हुक्मरान के नाम से इसका नाम था और फिरोज़ शाह कोटला स्टेडियम उसके नाम को तब्दील करके अरुण जेटली के साथ मंसूब कर दिया गया। माजरत की ख्वास्तगार हूँ। ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को इंतहा पसंद हिंदू के नाम से मंसूब करने का ऐलान भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के बैन अल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का नाम फिरोज शाह से तब्दील किया गया और अब इसका नाम अरुण जेटली के साथ किया गया है और भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली से मुंतखब होने वाले बीजेपी के शिद्दत पसंद भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मुसलमानों से अपनी नफरत का इजहार करते हुए ऐलान किया है कि नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बहुत पहले तब्दील कर दिया जाना चाहिए था, तमाम अब इस स्टेडियम को हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले शिद्दत पसंद हिंदू सियासतदान अरुण जेटली के नाम से मंसूब करने का फैसला कर लिया गया। रहना अपने एक इलाके में, आप सगे रिश्तेदारों के बीच में अगर इस तरह से ज्यादती हो जाए तो रिश्तेदारों में रिफ्ट हो जाती है, वेयर एज टू कम्युनिटीज लिविंग इन वन प्लेस, आप इमेजिन कीजिए उनकी क्या सूरत हाल होगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी।
वालेकुम अस्सलाम।
मेरा नाम रियाज हुसैन है जी, ते मैं थोड़ी उम्र का ही बंदा, ते मैं पाकिस्तानी हाँ, मैं ये आखना चाहना मतलब मेरी अपनी जाति राय पॉलिटिक्स नाल दी काफी बड़ा तल लगे, मैं पीटीआई दे बानी कारकुना दे विचों।
अच्छा।
ते मेरा अपना आखना ये वे के पाकिस्तान ता पहला ही राजी है कि रेफरेंडम दे जरिए जो भी स्टेटस कश्मीर लेना चाहता उन्हें मिलना चाहिए, जे वो भारत नाल जाना चाहता उन्हां नाल चला जावे, पाकिस्तान नाल आना चाहता है तो इधर आ जावे, ते होर त्रीजा विच पा लैण वी कश्मीरी वखरा रहना चाहते तो वखरा भी रहण देण उन्हां नूं,
बिल्कुल सही,
उन्हां नूं कतले आम करन दा इहनूं ना कोई हक हासिल नहीं है। जिहड़े मतलब असीं सिखां नूं सिख कौम जिहड़ी उन्हां नूं शाबाश दिंदे आ, उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने आ कि वो कश्मीर दी आवाज भी जिहड़े चंगे सिख ने जिहड़े असली सिख ने वो उठा रहे ने, इस वास्ते कि उन्हां हमेशा जुल्म दे खिलाफ आवाज उठाई, उन्हां ने मासूमां दी हमायत कीती है। इंडिया ये सब कंटीनेंट च जदों भी कोई जुल्म होया ना ते सिख मजलूम दे नाल खलो गए ने, ते हुण भी सिखां उन्हां दा असीं शुक्रगुजार हाँ कि वह मजलूम कश्मीरियां दे नाल ने, कश्मीरियां दे विच अगर असीं थोड़ा बहुत दखल देने हाँ ते चूंकि असीं उस खिते दा हिस्सा हाँ, चाइना साडे खिते दा हिस्सा नहीं, सब कंटीनेंट दा हिस्सा नहीं, साडा बंटवारा आपस च होया है, उस बंटवारे दे नतीजे दे विच साडा ये फैसला होया सी उस वक्त दी जिहड़ी है सी ब्रिटिश गौरमेंट दा कि वोट दे जरिए जिहड़ी स्टेट या जिथे ज्यादा मुसलमान रहिंदे ने उह जिधर जाना चाहण जा सकदे ने, वो कश्मीर नू हक नहीं दिता गया, बाकी सारे नू दे दिता गया, सिखां नू भी आख्या गया तुसीं आपदा बना लो, खालिस्तान ने ना बनाया, उदों उन्हां दी मर्जी सी, जिवें भी उन्हां फैसला कीता उन्हां दे लीडरां ने, वो सानू उहदे विच दखल नहीं देना चाहीदा, लेकिन कश्मीरी आवाम नू जिस तरह नाल हुण जुल्म हो रहा है सिस्टर जी, 23 दिन हो गए ने, ये सारे मन्नी जांदे, सरदार भी मन्नी जांदे, ईवन इंडिया का कुछ मीडिया भी मन्नी जांदा कि भाई जेड़ा ना मतलब ये उन्हां नाल विचारे नाल धक्का हो रहा है, उन्हां नाल ज्यादती हो रही है, उन्हें भुख्या तस्या जेड़ा कोई निकलता उन्हें मार दो, ये कोई तरीका नहीं है, ये अजकल जेड़ा तरीका है वरत्या जा रहा है, ये जदों इन्होंने अहमदाबाद च वरत्या सी उस तो भी जालमाना तरीका वरत्या जाएगा, उस तो ही जेड़ा जेड़ा अहमदाबाद दे विच इन्हां ने जो कुछ किया गुजरात दे विच, ये गुजरात दा ही बंदा है, ये उस तो वध करेगा, इत्थे कट नहीं करेगा।
ਬਹੁਤ
ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਕਤ ਚੂੰਕਿ ਕਾਤਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਸਾਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਸਤਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਏ ਔਰ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਮੇਰੇ
ਲੈਟ ਦੈਮ ਲਿਵ ਕਾਮਲੀ ਲੈਟ ਦੈਮ ਲਿਵ ਕਾਮਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਾਲ ਹੈ ਆਪਕੀ ਅਭੀ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਜਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਆਈ ਹੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਨ ਦਫ਼ਾ ਟੈਕਸ ਕੀਆ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ डू आई लुक लाइक इंडियन एजेंट
हमारा खून खोल रहा है जब से ये कश्मीर का मुद्दा हुआ है आप उनकी काले इंटरटेन करती हैं और बैठ के उनके भाषण सुनती हैं और युगधीर उनके प्रोग्राम में जब हम कॉल करते हैं तो हमारी काल ही
किसी का नाम ना ले किसी का नाम किसी का नाम ना ले
चलो ठीक है सर ओके ओके
अच्छा मुझे ये पहले बताओ मैंने तो आपको इतना दोनों में याद रखा मेरे फोन पे तीन दफा मैसेज करके लिखते हैं
तो इसलिए देखे बात सुने चाइना का मामला ये वही वाले कोल्ड वार एरा में हम चल रहे हैं कि रूस में जो है ना काफर बसते वहां मुसलमानों को मार रहे आज यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद रूस में खुल गई है वो जो अपना एक पूरा मुस्लिम स्टेट है उसके अलावा 6 स्टेट निकले वहां से
चेचनिया में खुली
है मेरे दो भतीजे चाइना में पढ़ते ईदे मना रहे सब कुछ कर रहे आजादी से उनका स्टेट की पॉलिसी है कि कोई रिलीजन नहीं होगा उस क्या डिबेट करना कश्मीरियों के मुद्दे पे
ये पॉलिसी कनाडा में भी है आप क्यूबेक में चले जाएं उन्होंने कहा है कि नो रिलीजियस बैंस
तो आप सियासत नहीं समझ रही तो हमसे बात कराए तो हम तो बोल खोलते ना देखें
ओके डू आई लुक लाइक इंडियन एजेंट ओह माय गॉड
मुझे गुस्सा आ रहा था ना कि यार हमारा खून खोल रहा है इतने दिनों से उन बिचारों का नाटक बंद कर रहे ये आके भाषण देते सरदार बन के हालांकि सरदार भाई पूरी दुनिया में जो है ना हमारे सर का ताज है जो इंडियन एग्रेशन के खिलाफ जो उठ खड़े हुए कि ये नस्ल कशी करनी जा रही है ये जर्मनी के भी हिटलर की तरह एडोल्फ हिटलर की तरह है जो ना लोगों के जो आप मैस ग्रेवियार्ड मिलेंगे आगे चल के आपके ये तो डबल स्टैंडर्ड है हमें थोड़ा बोलने का तो मौका दे ना इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री था उसके अंदर क्रिश्चियन कंट्री का मामला कैसे दो मिनट में सुलझ जाता है लेकिन मुसलमानों का मामला हो तो नहीं उठता बोस्निया के अंदर मोहतरमा जो 300 चलर को लेके गई थी और जाके इंटरनेशनल मीडिया में उठाया था उसके बाद जो बोस्निया का मामला जाके रुका था तो निकलना पड़ेगा आपको बोलना पड़ेगा खुल के बोलना पड़ेगा तो आप इनको इंटरटेन करती हैं जो हमारे दुश्मन है जो हमारे लोगों को मार रहे वहां पे इंसान नहीं समझ रहे जो जानवर को पता नहीं क्या समझते और इंसान का कत्लेआम कर रहे हैं
सही
और बलोची 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 कह रहा था बलोची बलोची ओमान में इसीलिए थे कि पोर्चुगीज ने हमला किया था हम अरब नस्ल हैं हम जब मैं फिर कहता हूं बाबर 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 मुगल है बाबर भागा था सिंध में हुमायूं पैदा हुआ था ये बलोची तो जिन्होंने दिल्ली फतह किया थी हमारी माए हमें दूध पिलाते हुए कहती है कि दिल्ली फतह करनी है क्या बात करते ये इंडिया वाले
सही सही बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया उस दर्जी गुस्सा नहीं किया करते होते चाइना की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ लेकिन उन कॉलर्स भी हमारे साथ हैं मगर इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कहते हैं कि माहरीन बहुत अरसे से चीन की फैलती फौजी जिद्दत के बारे में बात कर रहे हैं और चाइना को उभरती हुई कुव्वत करार देते हैं हालांकि चाइना उभरती हुई कुव्वत नहीं है उभरती हुई कुव्वत नहीं बल्कि ये कुव्वत बन चुका है और ये कई तरीकों से अमेरिका को तमाम अस्करी हलकों में टक्कर दे भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के शोभा अमरीकी तालीमत ने अपनी रिपोर्ट में ये एनालिसिस किया है इस रिपोर्ट में बहरहिंद और बहरुल काहल में अमरीकी दिफाई हिकमत अमली एक अनोखे बहरान का शिकार है और ये कि वाशिंगटन के लिए चीन के मुकाबले में अपने दोस्त ममालिक का दिफा करना मुश्किल होगा ये जो रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में तैयार की गई है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सिडनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के शोबा अमरीकी तालीमात ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, और उन्होंने अमरीका की फौजी बर्तरी उन्होंने कहा है कि अब ख़त्म हो चुकी है, और ताकत का तवाज़न बरकरार रखने के लिए अमरीका की सलाहियत तेज़ी से गैर यकीनी हो रही है। रिपोर्ट में बीजिंग को गैर मामूली मिज़ाइलों का जिक्र किया गया और बताया गया कि किस तरह अमरीका इसके दोस्त ममालिक के अहम फौजी अड्डों के लिए खतरे का बायस है। चीन अमरीका की तरह एक आलमी सुपर पावर तो नहीं है, यकीनन चीन के अस्करी मकासद इस हद तक जाना होंगे जो शायद तब्दील हो जाए। फिलहाल आलमी रसाई के लिए चाइना अपनी मईशत पर कहीं ज़्यादा इन्हसार करता है। चाइना के पास बैरून मुल्क मुहिम जोई का तजिया नहीं है, तजुर्बा नहीं है, जो इसने 20वीं सदी के दौरान अमेरिका को आलमी बर्तरी दिलाई। अमेरिका के पास पूरी दुनिया में घूमने का तजुर्बा है, मगर चाइना के पास अभी वो तजुर्बा नहीं जिसमें ये एशिया पैसिफिक लाइंस बना रहा है, जिसमें ये अपने उन टर्म्स को अब डेवलप कर रहा है। चाइना के पास अमेरिका जैसी सॉफ्ट पावर है जिसे दुनिया भर में अमेरिका की नीली जीन्स, हॉलीवुड की फिल्में और बर्गर्स मशहूर हैं। इन चीज़ों से बाहर के लोगों की हौसला अफजाई होती है। कई तरीकों से वाशिंगटन के पास बीजिंग से ज़्यादा फौजी ताकत है। वाशिंगटन दर हकीकत मॉस्को के पास बीजिंग से कई ज़्यादा, वाशिंगटन और मॉस्को यानी रशिया के पास जौहरी हथियार बहुत ज़्यादा हैं। अब साहब टेक्नोलॉजी के एतबार से अमेरिका को कुछ चीज़ों में बढ़तरी हासिल है, जैसे इंटेलिजेंस अमेरिका की बेहतरीन है, दिफाई बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका के बेहतरीन है, जदीद जंगी जहाज़ अमेरिका के बेहतरीन है। अमेरिका एशिया और यूरोप के नेटो ममालिक में अपने इत्तेहादियों पर भरोसा कर सकता है, यानी अमेरिका के पास एक नेटवर्क है। अब चाइना के पास ये नेटवर्क नहीं है, यानी अगर ये नेटवर्क नहीं है तो वो तेज़ी से अपनी टेक्नोलॉजी में वाशिंगटन की बढ़तरी को ख़त्म तो कर रहा है मगर उस हिसाब से ख़त्म नहीं कर पा रहा। चीन के लिए एशिया सबसे अहम है, जिसे वो वसी ज़बान में अपने इलाके के तौर पर देखता है, यानी वो ये समझता है कि मैं अपने इलाके का गुरु हूँ। चीन के पास इत्तेहादियों का निज़ाम तो नहीं है। चीन ने अमेरिका की जंगी सलाहियतों का मुतालिया किया, अपने लिए एक मौसर हिकमत अमली बनाई ताकि अमेरिकी फौजी कुवत के रवायती ज़राए का मुकाबला कर सके। चाइना के पास ताकतवर अमेरिकी बहरी बेड़े शामिल हैं जो कि वाशिंगटन की अस्करी कुवत का मरकजी हिस्सा हैं। अमेरिका के पास आपको पता है पूरी दुनिया में बहरी बेड़े इसके चले फिरते हैं। फौजी ज़बान में इसे हिकमत अमली कहा जा सकता है, और चाइना ने अपनी तवज्जो हथियारों के ऐसे निज़ाम और सेंसर्स पर मरकूज कर ली है जिनकी मदद से उम्मीद है कि अमेरिका की अफवाज इनके सायनों से जितना दूर हो सकेगी वो रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया में तहकीक के मुताबिक मदाखलत की रोकथाम के बने चीनी निज़ाम ने बहरा हिंद बहरुल काहल में अमेरिकी सलाहियत को बहुत कमज़ोर कर दिया, यानी जो इनका नया निज़ाम है आप इमेजिन कीजिएगा हवाई को कितना तंग किया है, मगर ये टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया में बाकायदा एडवर्टाइज़ हो रही है। चीन ये भी चाहता होगा कि सेकेंड आईलैंड चीन तक अमरीकी रसाई को हथियारों के ज़रिए महदूद किया जाए, लेकिन पेंटागन चीन के चैलेंज से ना वाकिफ है। सिडनी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट अब सवाल ही उठाती है कि आया वाशिंगटन का ध्यान इस अमल पर मरकूज है या नहीं। ये जो सिडनी की तहकीक है इसके मुताबिक अमेरिका की खारजा पॉलिसी की इस्टेब्लिशमेंट में सुपर पावर होने की फरसुदा जहनीत से मुमकिन तौर पर आलमी माहदों से मुतलिक वाशिंगटन की सलाहियत महदूद हो जाएगी। अमेरिका की कुवत तनज़ली का शिकार है, ताकत के बड़े मुकाबले। आप सोचिएगा अभी रिसेंटली फ्रांस के जो मैख्वा हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ भी इनका थोड़ा गिला गुजारी रही। चाइना वाज़े तौर पर बाख्तियार है, आप उसकी दिफाई दस्तावेज़ात के लहजे से देख सकते हैं। ये जो रिसेंटली तिजारती जंग चाइना और अमेरिका के दरमियान है, इसमें जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप के सामने खड़े होने का फैसला किया, हर मैदान में पुरेतमाद पोजीशन ली, चाहे बात हांगकांग में जमहूरियत पसंद मुजाहरों की हो, ताइवान पर चीन के पुराने दावे की हो। चीन के लिए अपनी मुआशी ताकत के साथ फौजी कुवत होना नागजीर था, लेकिन कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि सदर ट्रंप ने सूरतेहाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। اب صاحب امریکہ میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تجارت پر چین کے خلاف کھڑے ہونا ضروری تھا، لیکن کچھ ماہرین کے مطابق جو راستہ اس وقت امریکہ نے اختیار کیا اس سے شاید تجارتی جنگ امریکہ ہی ہارے گا. چائنا میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ موسٹ آف دیئر کمپنیز ول بی بینک کرپٹ، امریکہ کی کمپنیز ول بی بینک کرپٹ اینڈ دا لاکس آن دیم ول بی میڈ ان چائنا. مجموعی طور پر ٹرمپ انتظامیہ میں خارجہ پالیسی کی واضح حکمت عملی کا فقدان ہے. صدر کے ٹویٹر پر بیانات عجیب و غریب خلفشار کا شکار. چائنا جانتا ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے، یعنی چائنا ہیز اٹس ڈائریکشن، اس نے اپنی حکمت عملی اور اس کے مطابق بنائی ہوئی یعنی تمام ارادوں اور مقاصد کے پیش نظر اپنی منزل پر پہنچ گیا. لوگ تو کہتے ہیں چائنا ابھرتی طاقت ہے، مگر چائنا ابھرتی طاقت نہیں، چائنا ایک طاقت بن گیا. اور اگلی طاقت اسی خطے میں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے انڈیا کو، مگر کیا امریکہ دو طاقتوں کو ایک حصے میں دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا، یہ بات کی بات ہے. ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں، یقیناً ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے اس کے بعد پھر لائٹ اور موڈ کی طرف چلیں گے. جی السلام علیکم. جی
ہیلو.
ہیلو
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی یہ چائنا کا اور انڈیا کشمیر کا کمپیریزن ہو رہا تھا. میں جاتا ہوں چائنا ایوری تھری منتھ.
جی
میں وہاں مسجدوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں. وہاں اتنی بڑی بڑی مسجدوں میں اتنی نماز ہوتی ہے کہ وہاں سے ان کی لوکل پولیس جو ہے کراس کروا رہی ہوتی ہے لوگوں کو، اور وہاں ہر تیسری گلی میں حلال ریسٹورینٹ ہوتا ہے. وہاں جو چائنی مسلمان ہیں اتنے اچھے مسلمان ہیں کہ ہم بھی اس طرح کے نہیں. اب آگے بات انڈیا کی. ایکچولی یہ ہندوؤں کو پہلی دفعہ حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ ہندوؤں نے کبھی زندگی میں حکومت نہیں کی سوائے اشوکا کے. اشوکا نے حکومت جب کی، اس نے جب ہندوؤں کا حال دیکھا تو اس نے ہندو مذہب کو چھوڑ گئے، بدھ مت ہو گیا. ہندوؤں کو کبھی بھی موقع نہیں ملا حکومت کرنے کا، کیونکہ جسٹس نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں مسلمانوں نے کتنی حکومت کی جب سے اسلام شروع ہوا ہے، اس وقت سے لے کے 1921 تک مسلمانوں نے حکومت کی، سلطنت عثمانیہ تک.
جی جی.
اور اسی لیے حکومت کی کیونکہ مسلمان جسٹس کرنا جانتے ہیں. انگلینڈ نے کتنی حکومت کی 100 سال کی ہوگی، امریکہ نے کتنی حکومت کی 100 سال کی ہوگی، کسی کو حکومت نہیں کرنا آتے کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکتے. اسلام نے حکومت کی، اب ان کا سسٹم تباہ ہو گیا ہے. ویسٹ جو تھا وہ ترقی کر رہا تھا انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے، اور ہم امیگرینٹ ان کی انڈسٹری کو رن کر رہے تھے. اب وہ انڈسٹریل ریولوشن چائنا میں ٹرانسفر ہو چکا ہے اور ان کو امیگرینٹ نہیں چاہیے. یہ پاور شفٹ ہے، یہ ریسیشن نہیں ہے. ویسٹ از ڈیڈ.
بہت شکریہ سر،
ویری گڈ انالیسز. اور آپ نے جو یہ بات کی ابھی، جب میں اس بھائی نے جب بات کی تھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں شاید چائنا کو ڈیفینڈ کرتی ہوں. آئی ڈونٹ ڈیفینڈ چائنا، مگر ظاہر ہے ایک اور نیوز جو اکثر آپ دیکھتے ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی نیوز ہو. دیز آر ناٹ انٹرنیشنل میڈیا. آپ کو پتہ ہی ہے جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی پچھلے دنوں ابھی نندن جب آئے تھے تو جو ہوئی تھی، تو ہمارے اپنے ہی ISPR کا جو شعبہ ہے ان کی ایک سے زیادہ برانچز تھیں، بے شمار برانچز تھیں جو کہ سوشل میڈیا اس کو آپریٹ کر رہی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین کے دوران. بھائی بھائی آپ اس کو بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یا یہ جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، ان کی ایجنسیز یا جو ہوتی ہیں ان کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ایک سے زیادہ لوگ سرٹن تصویروں کو یا سرٹن ویڈیوز کو پوسٹ کرنے کے بعد وائرل کر رہے ہوتے ہیں.
بیسیکلی یہ پہلے ہمیشہ سے
برین واش
امریکن پولیٹکس ہوا کرتی تھی، جو اب آہستہ آہستہ
پوری دنیا میں چلتی
دنیا میں اب
پوری دنیا میں چلتی چلی آ رہی ہے. اس وقت بھی کینیڈا میں الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہیں، اور آپ امیجن کیجئے گا کہ کنزرویٹیوز کے بھی بے شمار گروپس ہوں گے، جو مختلف میڈیا گروپس ہوں گے جو کہ
ڈرٹ فائنڈنگ کہتے ہیں.
ڈرٹ فائنڈنگ ایگزیکٹلی. You use the, because that's what I said, please intervene. Dirt finding facts جو ہیں وہ ان کو وائرل کیا جاتا ہے. تو وہ بھائی صاحب جو آپ نے کال کی تھی، تو آپ نے جو یہ بات کی تھی، ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے आपको डिफेम करने के लिए एजेंसीज काम कर रही होती हैं, दैट इज हाउ दे आर डिफेमिंग चाइना। बट ऑफ कोर्स चाइना को उभरती ताकत कहा नहीं जा सकता, चाइना उभरती चाइना एक ताकत बन गई है विच इज अ थ्रेट टू इन अमेरिका, और अमेरिका वुड नॉट लाइक आज भी फौजी ताकत के लिहाज से अमेरिका एक ताकत है इवन हमारे एशिया में भी, मगर चाइना टेक्नोलॉजी में आगे चलता चला आ रहा है। हालांकि आप इमेजिन कीजिएगा अमेरिका को सपोर्ट कितनी है, पूरी दुनिया में अमेरिका की करेंसी में कारोबार हो रहा है, यानी हर तौर पे अमेरिका को बेनिफिट मिल रहा है। वेयर एज चाइना में अगर आप चले जाएं तो चाइना में आप चाइना की ही करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, दे डोंट लेट, उन्होंने अपनी जो सरहदें बनाई हैं उन सरहदों के बीच में उनके अपने कानून लागू हैं। मगर ये जो कहा जाता है ना कि मुसलमानों के लिए, आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम, मुझे याद है मैं और मुजफ्फर गिलगित की साइड पे जाया करते होते थे, तो हज से पहले ना माजिद भाई चाइनीज यहाँ आया करते थे, मेरे घर में आज भी एक टेबल क्लॉथ है क्रोशित का, क्रोशित का बना हुआ ये था, तो वो पर्ल्स, ये जो पर्ल्स और जो बेडशीट्स और हाथ का बने हुए काम की चीजें लेके आया करते होते थे और गिलगित में ये बेचा करते होते थे, और बेशुमार लोगों को, अभी मैं हज पे गई हूँ, मैंने बेशुमार मुसलमानों को वहाँ पे देखा है। जी अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे सॉरी कल मैं भूल गई थी, मैं शिबा बात कर रही हूँ। आफा बाजी आपको हज की मुबारकबाद देनी थी।
शिबा थैंक यू फॉर,
अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा करे।
बड़े अरसे के बाद आपने कॉल किया।
जी मैंने कल भी की थी, या असल में बाजी भाई होते थे, नो ऑफेंस बाजी भाई, और वो जब भी मैं ऑन करती थी हाईवे पे कुछ पे तो कहते थे बेहतरीन सा गीत सुनिए, फिर मैं बंद कर देती थी, और आरबा बाजी की आवाज ही नहीं आती थी। मुझे वाकई नहीं पता था कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह हज पे गई, फिर पांच मिनट बाद लगा तो कि अब आप फिर बेहतरीन सा गीत सुनिए, तो हम फिर बंद कर देती थी, तो मुझे बीच में जब वो बात करते हैं पता ही नहीं चलता था क्या बात है, इसलिए वो मैं अब मैंने कहा आप कॉल करती हूँ।
आई लव यू, थैंक यू वेरी मच जानू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शिवा जी अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, अपने घर का सुकून सलामती दे, आमीन सुमा आमीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
मेरा बेटा आफा भाजी, मेरा बेटा बस आपसे कहना
जी, अल्लाह हाफिज जानू। व्हाट्स योर नेम?
Ali Naki,
thank you very much for your call. Okay, so keep on listening and bring a nice poem for us. You have to sing a beautiful poem or recite something for us.
Okay.
I love you, beta. आपको पता ही है कि पोप पॉल जो हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी विज़िट करना है, रिसेंटली उन्होंने यूनाइटेड अरब अमारात को विज़िट किया है, अब उन्होंने विज़िट करना है सऊदी अरेबिया को भी। एक सहाफ़ी हैं जो कि अल जज़ीरा के साथ वाबस्ता हैं, इस सहाफ़ी ने, और मैं आपको बताऊं कि मैं भी रिसेंटली जब सऊदी अरेबिया से, बल्कि जब मुझे आने का भी इत्तफाक हुआ, तो ऑफकोर्स कल कलां को इन्होंने ये कहना है कि काबा शरीफ पे भी हमारा हक है, इसराइल यकीनन ये कह सकता है। ये अल जज़ीरा की एक लेबनानी निजात जर्नलिस्ट है जिसने यहूदियों को कहा है कि भाई फलस्तीन से निकलो और तुम लोगों को सऊदी अरब से निकाला गया, व्हाई डोंट यू गो बैक टू सऊदी अरेबिया। बहरहाल ट्विटर के ऊपर तो इनकी बड़ी ले दे हो रही है, बहुत बुरा भला इनको कहा जा रहा है, और इन्होंने कुछ दिन पहले ट्विटर पर मगरबी सऊदी अरब के तारीखी गांव मरहब की एक वीडियो शेयर की है, एरियल वीडियो शेयर की है, और इन्होंने कहा कि क्या यहूदी फलस्तीन से निकलकर अपने आबाई गांव में आबाद हो सकते हैं। अब जो लोग इनको बैक बैश, इनकी जो बैशिंग कर रहे हैं या इनको बुरा भला कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने यहूदियों को एक रंग दिया है कि आप लोग मदीना मनवरा की तरफ जा सकते हैं। यानी कई अफराद ने कमेंट्स भी किए हैं, गादा अवैस इनका नाम है, और इन्होंने कहा है कि यहूदियों को एक और मुकद्दस शहर मदीना पर कब्जा करने के लिए उकसाया इन्होंने। इन्होंने सऊदी अरेबिया के सहाफ़ी लवी शरीफ, उन्होंने यहूदियों के फ़लस्तीन पर कब्ज़े करने की तारीखी दलील दी और बताया कि इनकी मुकद्दस किताब में दर्ज है, यानी जो यहूदियों की किताब है तौरा, तौरात में ये दर्ज है कि फ़लस्तीन यहूदियों की सरजमीन है, मगर ये आधा जो अवैस है, इन्होंने ये कहा है कि एक्चुअली इन यहूदियों को सऊदी अरब से निकाला गया था। इन्होंने मरहब इलाके की तस्वीर को शेयर किया कि तुम लोगों को यहाँ से निकाला गया था, क्या तुम यहाँ वापस आके आबाद हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। बहरहाल ये एक नया मसला शुरू हो गया इंटरनेट के ऊपर। अरब तारीख के मुताबिक ये मरहब वो मुकाम है जहाँ से 268 हिजरी में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान तारीखी जंग गज़वा खैबर लगी थी। ये इलाका मदीना मुनव्वरा से 150 से 170 किलोमीटर की दूरी पर है और 1300 साल पहले यहूदियों का ये गढ़ था। और ये जो आगादा वैस है, इन्होंने इसी इलाके की एरियल पिक्चर को शेयर किया और यहूदियों को उकसाया है कि तुम अपने आबाई शहर में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप एयर पे?
ऑफ द एयर।
मैं ऑफ द एयर लेती हूँ, अब क्विक कॉल्स लेंगे अगली कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी जी
वालेकुम अस्सलाम।
जब आप प्रोग्राम करें तो पीछे शुकार बहुत आता है आपकी बात में, पता नहीं किसी ने होल्ड किया या क्या है, आवाज क्लियर नहीं आती आपकी, बहुत शोर आता है।
होल्ड की वजह से
जी, वो किसी को होल्ड किया हुआ था इसलिए शोर आ रहा था। आई एम सॉरी, उनकी गाड़ी में शोर था या उनका शीशा नीचे उतरा हुआ था, माजरत की ख्वास्तगार हूँ। जिस भाई ने होल्ड किया है आपसे भी बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम,
लॉन्ग टाइम लिसनर फर्स्ट टाइम कॉलर अरफा बाजी।
आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया। मैंने क्या गलती की?
नहीं, गलती नहीं की, मैं सिर्फ अपना एक कॉमेंट पेश करना चाह रहा हूँ।
आप प्लीज फरमाइए।
वो ये है कि इफ यू कुड रीजन विद रिलीजियस पीपल देयर विल बी नो मोर रिलीजियस पीपल। दैट इज माय कमेंट।
बहुत शुक्रिया सर।
बहुत शुक्रिया। आज ना सऊदी अरेबिया एक वीडियो है जो वायरल हुई है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन, मगर मुस्लिम कंट्रीज में ही आग लगी हुई है और कहीं भी आग नहीं लगी हुई मुस्लिम कंट्रीज में, और ये इक्तदार की हवस की आग है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो,
नेक्स्ट।
हेलो
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 जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
I'm also like long time listener and first time caller.
I thank you for your call though.
तो आपको पहले तो मुबारकबाद दे रही थी, आप माशाल्लाह हज करके ही हैं, अल्लाह ताला आपकी हज कबूल करे।
आमीन आमीन आमीन।
आपने हमारे लिए भी दुआ की होगी।
मुझे मेरे सारे लिसनर्स याद आए थे, मगर शायद मैं बाय नेम आपकी आवाज मेरे कानों में नहीं थी, मगर जो आवाजें मेरे कानों में थी आप बंदे बंदे को मैंने याद किया था, और जो बिजनेसमैन भी हमारे साथ है और जो नहीं भी हमारे साथ, मैंने उनके लिए भी के, और मैंने कोई चोरी नहीं की। अल्लाह ताला अपनी जनाब से रिस्क हलाल अता फरमाए मुझे भी और आपको भी और हम सब।
आमीन आमीन आमीन। मैं थोड़ा सा ये कह रहा था कि ये जो अभी आप डिस्कशन हो रही थी ना कश्मीर की और ये चाइना की, इसको अगर हम, आपका वाला पॉइंट वो बिल्कुल वैलिड था कि कश्मीरियों को भी तो पूछा जाए ना यार कि आपको क्या चाहिए।
एग्जैक्टली
और उसी पे ही मेरा ख्याल है कि अभी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जो अगर आप कश्मीर का इशू आज बंद कर दे, हमारी फौज किसी काम की नहीं रहेगी, हम इंडिया की फौज का कोई मकसद नहीं रहेगा, तो ये एक किस्म की पॉलिटिक्स भी है और सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है काफी काफी लोगों की इसके साथ। इसको अभी जो इस पॉइंट पे जब आ गया है ना, तो इसके वजह से हल होना चाहिए। इमरान खान जो भी रोल प्ले कर रहा है ना, उसको इससे बेहतर करना चाहिए और इसका जो है ना वो रेजोल्यूशन डेफिनेटली डेफिनेटली निकालना चाहिए इसको।
बहुत ज़बरदस्त। मैं एक चीज़ के ऊपर अगेन, आई डेफिनेटली पाकिस्तान की इतनी लीडरशिप्स गुजरी हैं, कभी किसी ने कुछ नहीं किया, मगर अभी रिसेंटली एक जो फैसला हुआ है जनरल राहील शरीफ को जो 3 साल की एक्सटेंशन दी है, आई हैव माय रिजर्वेशंस ऑन दैट। देखिए साहब, मुझे रिजर्वेशंस हैं। एग्जैक्टली कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की आर्मी में जितने जनरल्स हैं वो प्रमोट होने के बाद उस स्टेज के ऊपर आते हैं एंड दे आर इक्वली क्या कहते हैं क्वालिफाइड हैं, दे आर ऑल कंपिटेंट जर्नल्स, तो क्या वजह है, किस चीज का इतना खतरा था कि उन्होंने कहा कि सिर्फ दिस इज समथिंग?
हालात, मुल्क के हालात ऐसे इमरजेंसी पे हो ना, तो उस वक्त
लेट मी टेल यू दिस इज नॉट दैट,
मैं आपके उनका उनका बता रहा हूं,
वन जर्नल इज लुकिंग आफ्टर, ऑल जर्नल्स आर एट द सेम प्लेटफॉर्म.
व्हाई जर्नल नहीं शरीफ, यू नो दैट्स अनदर पॉइंट, व्हाई देयर इज नो अदर वे, यू नो देयर इज नो अदर पर्सन.
एग्जैक्टली एग्जैक्टली. एंड माजिद भाई, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ जब हमारे पास रिटायर होते हैं और साथ ही जाके वो सऊदी अरेबिया में जाके अपॉइंट हो जाते हैं, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ही वुड नॉट हैव स्टार्टेड इन सऊदी अरेबिया बिकॉज ही वॉज जर्नल इन पाकिस्तान, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में देयर इज अ टाइम पीरियड जिसके लिए वो, बहरहाल मुल्कों की सियासत है, मुझे इसके बारे में कोई इतना इल्म नहीं.
ऑन द लाइटर नोट, मैंने थोड़ा सा ये भी कहना था कि आप या तो जाफरी साहब से थोड़ी सी क्या क्या कहते हैं उसको ट्रेनिंग लें थोड़ी सी, और थोड़ी सी ट्रेनिंग जरदारी साहब से ले लें, तो वो ज्यादा आप अच्छे तरीके से जवाब देंगे बाकी लोगों को.
मगर मैं पोलाइट ही रहना चाहती हूँ. जरदारी साहब ने तो आज मुझे 3 दफा टेक्स्ट किया, यू आर इंडियन एजेंट. नहीं, उनका प्यार था वतन से, उनका प्यार था कि उनकी कॉल नहीं लग रही थी.
अंदर से मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन यह कि आई मीन ये फोरम नहीं है कि हम किसी को बुरा कहें, किसी को अच्छा.
बहुत शुक्रिया चंदा भाई, थैंक यू वेरी मच. जरदारी साहब, बहुत से लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया. अमेरिका से आपके लिए मैसेज आया कि जरदारी भाई जिंदाबाद, मगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी कर जाते हैं, यानी बीच में अपनी बीबी का भी जिक्र कर जाते हैं. इसराइल ने साहब, आप देखिए एक और आग लगी, और ये भी कौन जल रहा है, मुसलमान. इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इट्स अ पीसफुल रिलीजन. माजिद भाई, आप इसराइल ने शाम में ईरानी फौजी तनसीबात पर हमला करके तबाह करने का दावा करने के बाद, इत्तलाआत के मुताबिक लेबनान पर भी शामी सरहद के नज़दीक वादी बका में एक कार्रवाई कर दी. इट वाज़ यस्टरडेज़ न्यूज़ बेसिकली. यानी आप सोचिएगा कि मेरा शाम, एंड अगर आप हिस्ट्री की तरफ जाएँ ना, तो शाम ने थ्रू आउट द हिस्ट्री जब 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 इन इलाकों में जंग हुई, तो शाम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ईरान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टर्की प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इजिप्ट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लिबनानी ज़राए के मुताबिक इसराइली फौज के ड्रोन्स ने फलस्तीनी ग्रोह के ठिकानों को निशाना बनाया, ये लेबनान में. और इतवार को ईरानी नवाज लिबनानी अस्क्रियत पसंद ग्रोह हजबुल्ला के रहनुमा, उन्होंने ऐलान किया था कि इसराइल शाम और लिबनान में इनकी नकल हरकत को निशाना बना रहा है. इसराइल की जानब से लिबनानी सरजमीन पर यह कार्रवाई उसकी जानब से शाम में ईरानी अस्क्री तनसीबात को निशाना बनाने के इसराइली दावे के एक दिन के बाद की गई है. इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान इसराइल पर ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था, यानी ईरान इसराइल पर ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था, उससे पहले हमने लेबनान पर हमला करके उनके सेंटर को तबाह कर दिया. इसराइली फौज चादो नाजर ही शाम में अपनी फौजी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करती है, लेकिन इस हमले के बाद इसराइली हुकाम ने कहा कि ईरान के कातिल ड्रोन से इसराइल पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया. इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फौज की बड़ी फौजी कार्रवाई को बहुत सराहा भी है. सन 2011 में शाम में खाना जंगी शुरू होने के बाद इसराइल ने शाम पर सैकड़ों की तादाद में हमले भी किए, जिनका मकसद ये था कि ईरान को शाम में कदम जमाने से रोका जा सके. इसराइल के एक फौजी तर्जमान के मुताबिक हफ्ते को होने वाले हमले में दमिश्क के जनूब मशरिक में वाक़ शहर में ईरान की जो फोर्सेस को निशाना भी बनाया गया है. तो बहरहाल ये थी, ये कल ही की न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर की है. इसराइल ने गुज़श्ता माह इराक में हथियारों के एक डिपो पर भी फजाई हमला किया था. अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने अपना नाम जाहिर न करते हुए अखबार को बताया कि 19 जुलाई को हथियारों के डिपो पर हमले के पीछे इसराइल मुलव्वस था. अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक ईरान शाम में हिस्सा मुंतकिल करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर रहा था, यानी इसराइल का खदशा था कि ईरान यहाँ पर था और वो बेसिकली अटैक करना चाहता था ऑन इसराइल, मगर इसराइल ने उस हमले को पस्पा कर दिया. चलिए साहब, ये तो थी पॉलिटिक्स का हिस्सा. आइए मैं और आप एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश ज़रूर करें. میری آپ کی ہم تمام کی زندگی میں, ہمارے بچوں کے لیے بھی ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بہتر سے بہترین زندگی گزاریں, مگر بچوں کو صرف پیسے کی حوث ہی نہیں مگر ہیومینٹی کے بارے میں بھی درس دینا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی حدود رکھتا ہے اور اپنی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش اور کاوش ہر شخص کی ہوا کرتی ہوتی ہے. بعض اوقات میرے جیسے لوگ, آپ کے بہت سے لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو چیلنج دیتے ہیں, کین آئی ڈو اٹ اور کین آئی ناٹ ڈو اٹ, کین آئی ڈو اٹ اور ناٹ. تو کسی بہتری کے لیے جب ہم تبدیلی پیدا کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ آسان ہوا نہیں کرتی ہوتی. بہرحال اگر انسان کو اپنے پر یقین ہو مگر اس کو اپنی حدود کی آگاہی بھی ہو, یعنی مجھے اپنے پہ یقین ہے اپنی کیپیبلٹیز پہ مگر مجھے میری اسٹرینتھس کے بارے میں, مجھے اپنے سراؤنڈنگس کے بارے میں بھی علم ہونا ضرور چاہیے, یعنی اپنے خوابوں اور مقاصد کے حصول کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ایک انسان ہے اور ایک انسان اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. وی لیو ان اے کمیونٹی اینڈ کمیونٹی بیس ہم کام کرتے ہیں. انسان خود پر اتنا دباؤ نہ ڈالے جتنا کہ اس کا چلنا بھی مشکل ہو جائے. بہرحال ناکامی سے گھبرانا, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا مقاصد اور کے حصول میں مددگار ہوتا ہے, یعنی وی مسٹ نو آر ویک پوائنٹس. ایک اور ہے کہ وی شوڈ لیو سمپل لائف, حالانکہ آج ہماری زندگی اتنی سمپل ہے نہیں, وی ہیو میڈ آر لائف ویری کمپلیکیٹڈ, یعنی انسان میں قوت برداشت کا فقدان ہو گیا ہے. ہزاروں چیزیں میری آپ کی توجہ چاہتی ہیں, بچوں کے کمرے کو بار بار سمیٹنا, گھر اور دفتر کے کاموں کی ترتیب سے وقت نکالنا, رشتہ داروں سے ملنا, یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک اپنے ذہن میں ہم یہ خیال نہ لے آئیں کہ زندگی رشتوں اور ماحول کو سادہ ہم نے کیسے رکھنا ہے. یعنی اگر میں چاہتی ہوں کہ میری فیملی آئے تو ناٹ نیسسرلی کہ ہر بار میں بہت مرغن کھانے تیار کروں. یس, میرے فیملی ممبر ہیں, دے کین کم ٹو مائی ہوم اینی ٹائم, دے ڈونٹ نیڈ ٹو کال می, اف دے کال جسٹ ٹو انکوائر کہ ایم آئی ہوم اور ناٹ, مگر اف دے کم ٹو مائی ہوم آئی کین سرو واٹ ایور آئی ہیو آن مائی ٹیبل رادر دین کہ میں اپنے آپ کو کسی مصیبت پہ مبتلا کر لوں. اپنی زندگی کو دوسروں کے مطابق مت گزارا جائے, یعنی آپ دوسرے افراد کی توقعات کے مطابق کیسے پورا کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک چیز آپ کر کے دیگر افراد کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ تو بہتر ہے, مگر اگر آپ ہر وقت وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہر دوسرے کے پاس ہے تو وہ یقیناً میری اور آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے بجائے مشکل کر دے گا. پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہے, یعنی وہ ماجد بھائی ایک لفظ کہتے ہوتے ہیں کہ آئی ڈیڈ مائی 100%, آئی کوڈ اچیو اٹ اور ناٹ, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. ہاؤ وڈ یو ایلیبریٹ؟
ناٹ 100%, آئی ڈو مائی 110%. My 110%, whatever I'm doing, I do 110%. And after that, the result is not in my hands.
The result is not in my
hands. At least you have the satisfaction.
یعنی اگر ہم اپنے نتائج کے بارے میں سوچیں اور اگر نتائج کا حصول ممکن نہیں تو منفی سوچ پیدا ہوگی. زندگی تو پرفیکٹ نہیں ہے, کامیابی اور ناکامی دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال انسان کو ریئلسٹک ہونا پڑے گا. البتہ دوسروں کا, اے مین, اے ہیومن بینگ شوڈ ناٹ بی سیلفش. یہاں سے میں آپ کو ایک بات شیئر کرتی ہوں. آج کے دور میں میں اور آپ, میں اس چیز کو محسوس کرتی ہوں کہ وی دا ہیومن بینگز آر ویری سیلفش. آئی واز ان مکہ معظمہ, تو یہ ایک بلڈنگ تھی جس کا نام حج بلڈنگ تھا. اراؤنڈ 700 کے قریب اس بلڈنگ میں لوگ رہتے تھے. تو اکثر لوگ اپنے کپڑے دھو کے اوپر کی جو 7th فلور تھا وہاں جا کے سکنے ڈال دیا کرتے ہوتے تھے. تو ماجد بھائی, ایک میرے پاس ویڈیوز تھیں, میرے فون اب گم گیا تو وہ ویڈیو بھی گم گئی. تو ایک دن میں اوپر گئی کیونکہ ہم, میں نے اور محمد علی نے ایک عمرہ اور کرنا تھا, تو عمرے کے لیے مجھے اس کا احرام دھونا بہت ضروری تھا. تو میں اس کا احرام دھو کے اوپر سکنے ڈالنے کے لیے گئی. تو یہ جو حج بلڈنگ تھی نا, یہ اٹ واز بٹوین, اس کے ارد گرد بڑے سخت پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں پہ اوپر ایک سڑک تھی, یعنی بنجر پہاڑ تھے. تو اوپر ایک سڑک تھی, شاید وہاں پہ گھر نہیں تھے, मगर ऊपर एक टावर सा भी बना हुआ था, मगर ऊपर एक सड़क थी। और सऊदी अरेबिया में भी आज़ाद कुत्तों को मैंने फिरते हुए देखा, बिल्लियों को मैंने फिरते हुए देखा। तो मैं बेटे का एहराम धो के ऊपर सुकने डालने के लिए गई। इट वाज मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock का टाइम था, 6:30, 7 o'clock का टाइम था। तो जब मैं ऊपर गई तो इतने बेशुमार कुत्ते भौंक रहे थे जैसे किसी गांव गली में चोर आ जाए रात के अंधेरे में, तो बेशुमार कुत्ते नहीं भौंकना शुरू हो जाते। और किसी एक आदमी की आवाज़ आ रही थी जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, जैसे कोई आदमी बहुत ऊंची आवाज़ में किसी को आवाज़ लगा रहा है। आई ट्राई टू लिसन, ये हेल्प की आवाज़ भी नहीं थी मगर कोई एक आवाज़ थी। मगर वो सारे कुत्ते, आई काउंटेड डॉग्स, देवर अराउंड 13 डॉग्स, 13 कुत्ते थे जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे, और ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। तो ये 13 कुत्ते जमीन की तरफ, यानी हमारी बिल्डिंग्स के नीचे की तरफ देखते हुए, मुंह इन सब के नीचे की तरफ थे और ऊपर से ये नीचे तरफ देखते हुए भौंक रहे थे इतनी बुरी तरह से कि आप, मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स। खैर, मैंने अपने कानों को जोर लगाने की कोशिश की कि क्या हो गया, कुत्ते एक ही जगह पे सारे देख रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे कुत्ते थे, विच आई काउंटेड 13 के करीब डॉग्स थे, और एक ही तरफ नीचे देखे थे, और किसी एक आदमी की आवाज़ आ रही थी, बहुत ऊंची आवाज़ थी। ना तो वो रोने की आवाज़ थी, ना वो कराहने की आवाज़ थी, ना वो हेल्प की आवाज़ थी, मगर कोई एक आवाज़ थी जैसे कोई ज़ोर से कुछ कह रहा है। खैर, मैं कोई 10-1 मिनट वहाँ खड़ी रही, कुत्ते लगातार भौंकते रहे, मुझे नज़र नहीं आया कि क्या। ऑल ऑफ सडन मैंने एक आदमी को, साथ वाली बिल्डिंग बन रही थी, उसके साथ वाली बिल्डिंग भी बन रही थी, तो एक आदमी जो कि पठान मुझे लगता था, शलवार कमीज नीले रंग की पहनी हुई थी, तो वो जो आवाज़ आ रही थी ना, उसको मैंने उस बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड पे पहाड़ों की तरफ जाते हुए देखा। आप यकीन कीजिएगा, उसके बाद एक और आदमी गया, इस आदमी ने पीछे आके किसी और आदमी जो वहाँ खड़ा था उसको बुलाया, और कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। मैं फौरन से 7वीं मंजिल से नीचे उतरी, आई वॉक्ड, और मैं वहाँ तक गई। कुछ लोग सड़क के ऊपर खड़े हुए भी देखने लग गए थे। अब पता ये चला कि वहाँ पर कोई एक आदमी पहाड़ से ऊपर से नीचे गिरा और वहाँ एक खाई थी, उस खाई के बीच में गिर गया। अब मैं क्या चीज़ एक्सप्रेस करने जा रही हूँ कि उस आदमी के गिरने को विटनेस किया था कुत्तों ने। और जब वो, और ये बड़े चटियल पहाड़, बड़े बड़े पत्थर थे इसके, जब वो गिरा तो उसके बाद कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। जब फिर पहली उसकी मदद पहुंची और दूसरी मदद पहुंची तो कुत्तों को एहसास हो गया कि कुत्ते भी खामोश हो गए, उस आदमी की आवाज़ आनी भी बंद होगी। इट टुक अराउंड 2.5 घंटे। 2.5 घंटे के बाद, इट वॉज बड़ी डीप जगह थी जहाँ पे वो जाके गिरा था, उस बंदे को खैर उन्होंने, एम्बुलेंस आ गई, उनकी 2 एम्बुलेंसेज आ गई, पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, पुलिस ने तस्वीरें वगैरह ली। बड़ा इनह्यूमन किस्म का उनका भी गैर इंसानी सलूक था, जो कि 2.5 घंटे एक आदमी जो इतनी चोटों में लगा। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने उस बंदे को निकाल लिया। मैंने उस बंदे की वीडियो पर बनाई भी थी, पूरा ज़ख्मी था, खूनो खून वो आदमी था। अब मैंने ये पूरा वाक्य आप क्यों सुनाया कि मैं और आप इंसान, हम में हमदर्दी का जज्बा उतना नहीं। कुत्ता क्या है? जानवर है। उस जानवर ने उस आदमी को जब गिरते हुए देखा था तो कुत्तों के भौंकने की वजह यह थी कि इतने बेशुमार जब कुत्तों ने भौंकना शुरू किया तो इंसानों की तवज्जो उस तरफ मबजूल हुई, इंसानों की तवज्जो मबजूल हुई। मीनवाइल उस आदमी की एक ऊंची आवाज़ भी आ रही थी तो लोग उस आवाज़ की सिमत में भागे। ये है इंसानियत, यानी इंसानियत अपनी इंसानियत को खो बैठी है मगर हमसे बेहतर जानवर है। मैं खुशहाल ज़िंदगी के बारे में बात कर रही थी। कहते हैं कि खुशहाल ज़िंदगी के लिए दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, यानी अगर मुझे मुश्किलात हो सकती हैं और अगर अपनी मैं मुश्किलात में जो महसूस कर सकती हूँ, अगर किसी दूसरे की मुश्किलात हैं तो ही फील्स एग्जैक्टली सेम कि अगर मैं उस मुश्किल में होंगी। तो इंसान को चाहिए कि दूसरों के साथ अपना रवैया मुस्बत रखे, तो यकीनन ये रवैया, जो मुस्बत रवैया है, ये मुस्बत रवैया भी हमारे ہماری سکسیس کا باعث بن سکتا ہے. انسان کو اپنے لہجے پر توجہ دینی چاہیے. میں اس آرٹیکل کو پڑھنے کے بعد آئی ٹرائی ٹو کنٹرول مائی اون لہجہ, کیونکہ ماجد بھائی کو مجھ سے بہت اعتراض ہے کہ آپ اپنی زبان کو اگر اچھا کر لیں نا تو آپ بہت اچھا انسان بن سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ مظفر علی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. وہ یہاں عامر ارائی ہیں, ان کو کہتے تھے یہ دل کی بہت اچھی ہے, اس کی زبان بڑی کڑوی ہے. آئی وش کہ آئی کین کنٹرول. ایک پازیٹیو اپروچ دیٹ کین ہیلپ اس ٹو لیڈ ٹو سکسیس. آف کورس ان آر لائف, آل آر لائف وی لرن نیو تھنگس. ہمیں زندگی میں ہمیشہ نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے. نئی چیز اگر کوئی آئے تو ہم کو اس کو شیطان تصور نہیں کرنا چاہیے. انسان کو شخصیت کو یا ذاتی اور پیشہ ورانہ طور پر مزید نکھارنے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنا حصہ بنانا ہوگا. یقیناً اجلت کا کام کہتے ہیں شیطان کا کام ہوتا ہے, جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے. رکاوٹیں, سفری تاخیر, لوگوں کی نااہلی کسی کے بھی قابو میں نہیں ہے. تو انسان کو وہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے. یو نو یو مسٹ بی ریڈی ٹو ٹیک ایکشن. سوچ سمجھ کر انتخاب ضرور کرنا چاہیے, یعنی جلدی کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. شاید ماجد جمال کی کامیابی کی یہی وجہ ہے. ایک اور چیز ہے کہ ہر وقت شکایت سے نہیں کرنا چاہیے, یعنی ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے کرائی بیبی. یعنی اگر سم تھنگ ہیپنس تو اٹ کوڈ بی مائی مسٹیک, آئی مسٹ انالائز مائی سیلف کہ میں نے کیا غلطی کی تھی. اینڈ آف کورس اف آئی اچیو سم تھنگ آئی مسٹ بی تھینک فل ٹو مائی فرینڈس, آئی مسٹ بی تھینک فل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جس کی وجہ سے, آئی مسٹ بی تھینک فل ٹو دا کنٹری جس ملک نے مجھے اتنی تعلیم دی, جس نے مجھے شعور دیا, جس میں مجھے بہترین استاد ملے, ان لوگوں کا بھی مجھے شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ آف کورس وہ تیمور اور چونٹی کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انسان کی زندگی میں فیلیئرز بھی ہوتے ہیں, فیلیئر سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور ایک دفعہ اگر ناکامی ہوئی تو بار بار کوشش کرتے رہنا چاہیے.
سکسیس اس کو ملتی ہے جو جس کو فیل ہونے کے بعد سیکھ سکتا ہے. وہ جو شخص ہی نوز ہاؤ ٹو ایکسیپٹ فیلیئر وہ آدمی بڑا سکسیزفل رہتا ہے.
چلیے صاحب, سن رہے ہیں آپ پروگرام ساز و آواز, میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر. 8:15 تک ہمارا آپ کا ساتھ ہوگا. کہیں اگر آپ اسٹیٹک محسوس کرتے ہیں, کہیں بھی اگر آپ اسٹیٹک محسوس کرتے ہیں, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تشریف, آپ ہمارا نمبر ہے 6475571017 لیجیے صاحب. چیچنیا میں ایک مسجد کا افتتاح ہوا ہے جو کہ بہت بڑی مسجد ہے, دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے. اس کے بارے میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, آپ اس انفارمیشن کو سنیے گا. چیچنیا کی اس مسجد, یعنی یہ عمارت, اس کو یونانی سنگ مرمر سے سجایا گیا ہے. چیچنیا میں یہ مسجد ہے. اس عمارت کو یورپ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کیا گیا ہے. چیچنیا میں اس مسجد کا, بہت بڑی مسجد ہے, سب سے بڑی مسجد ہے. اور پرائیڈ آف مسلمز, 30,000 نمازیوں کی اس میں گنجائش ہے. 30,000. عمارت کو یونانی سنگ مرمر سے سجایا گیا ہے. بہت خوبصورت عمارت ہے. اس کے علاوہ سونے سے بنی پینٹنگز اور کرسٹلز, اس میں کرسٹلز کے فانوس لگائے گئے ہیں. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. 30,000 نمازی ایک وقت میں یہاں نماز ہو جائیں گے. مسجد کی تعمیر مکمل ہونے میں 7 years کا عرصہ لگا تھا. ماجد بھائی, وہ اندلس کی کون سی مسجد ہے جس میں جس کو اب کرسچینٹی میں تبدیل کر لیا گیا؟ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کرتی ہوں. یہ اندلس میں مسجد ہے, بہت خوبصورت مسجد ہے, اپنی آرکیٹیکچر میں کمال رکھتی ہے. مگر ناؤ کوئی شخص اس مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتا, بیکاز اٹ از کنورٹیڈ ان ٹو دا چرچ.
یو گاٹ اٹ. اندلس اسپین کی بات کر رہی ہیں آپ, اسپین کی بات کر رہی ہیں آپ, کہ جہاں پر وہ مسجد تھی. اور اب مسجد کا ڈھانچہ تو ویسے ہی ہے, عمارت ویسی ہے, مگر وہاں پر
ڈھانچہ نہیں کہتے, آرکیٹیکچر کہتے ہیں.
آرکیٹیکچر, میں سمجھتا آپ سعودی عرب جا کے انگلش سیکھ کے آئیے, نو پرابلم. چلیے صاحب ایک گیت کی طرف دی جاتا ہوں آپ کو میں.
Witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years.
This is Rehan Siddiqui presenting the Janoon Comeback Tour, only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca.
राज थी अब खुली है खो गई थी मेरी है बेवजह जो लगी दीवानगी जो
Hi Canada, Assalamu Alaikum, this is Bilal Ashraf.
And this is Mahir Khan. And our film Superstar is coming out this Eid al-Azha.
So go and get your tickets now.
Right now.
And see us on the big screen.
राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए
ये है राजधानी राजधानी राजधानी
मल्टीपल लोकेशंस इन GTA फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग ला रहा है क्रिकेट के पुरजोश शायकीन के लिए पहला मेगा इवेंट ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल डे बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप
सितंबर 14 और 15 CAA सेंटर ब्रैम्पटन में आ रहा है ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट
रंगारंग तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम
टिकट फ्री पार्किंग फ्री स्टॉल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए राबता कीजिए
416-560-8583
चांदनी चौक चाट चटोरी गली में आमची मुंबई पाव भाजी चटोरी गली में कलकत्ता भेलपुरी चटोरी गली में जलेबी तलेगी चटोरी गली में कपल कनर मटका चटोरी गली में
Enjoy कीजिए 12 food stations and up to 150 items at Chattori Gully Food Festival, Tandoori Flame Mississauga and Brampton. Niyat phislegi jab jeeb laplapayegi, jab janta Tandoori Flame mein aayegi. Tandoori Flame, sab ke liye kuch na kuch.
साहब तारीख पे एक नज़र तारीख के झरोकों से एक सेगमेंट शुरू करना चाहती हूँ मैं ज़रूर शुरू करूँगी सलाउद्दीन अयूबी को इन दिनों में मुझे पढ़ने का मौका मिला उनके बारे में यानी नॉन मुस्लिम्स ने भी उनको एक्नॉलेज किया पावर को आज प्रोग्राम के शुरू में भी एक बात कही थी और ये जो मैं पैगाम अब शेयर करने जा रही हूँ दिस इज़ फॉर माई ब्रदर्स एंड फॉर माई सिस्टर्स वो कहते हैं कि इफ़ यू वॉन्ट सलाउद्दीन अयूबी के अकवाल तीन आपके साथ इस वक्त शेयर करूँगी एक उनका कॉल था कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू destroy any nation without war yani agar aap kisi qaum ko tabah karna chahte hain bina jang ke make adultery and nudity common in their young generation aur aaj internet ke upar phone ke upar jo log in cheezon ko dekhte hain ya in cheezon ko enjoy karte hain it is a lesson for you that if you want to destroy a nation make adultery and nudity common in the young generation aur main jab salauddin tareekh ke jharokon mein jab jaungi to aap dekhiyega ki there were times ke unki afwaj mein kis tarah se ladkiyon ko shamil kiya gaya tha aur kis tarah se phir wo tabahi ka baais bani thi एक और बात है कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस हम जहाद की बात करते हैं जहाद मेरे नफ्स के साथ जहाद है जहां मुझे मेरा नफ्स बुराई से रोके जहां मेरा नफ्स किसी इंसान को तकलीफ़ देने से रोके जहां मेरा नफ्स मुझे इस चीज़ का पाबंद करे कि मैं किसी दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद करूँ जो मैं अपनी ज़ात के लिए पसंद करती हूँ वो चीज़ मैं अपने घर के लिए पसंद करूँ जो मैं अपने किसी दूसरे के घर के लिए मैं वो चीज़ पसंद करूँ जो मैं अपने घर के लिए पसंद करती हूँ ये है नफ्स के साथ जहाद जो अदरवाइज इस्लाम इज़ अ वेरी पीसफुल रिलीजन सलाउद्दीन अयूबी ने यहाँ पे एक बात की थी आज के लोग सिर्फ लड़ना मरना और आप इमेजिन कीजिएगा कि ये लड़ाई इतनी कॉमन हो गई है कि हम सगे भाइयों के दरमियान भी ये लड़ाई आ गई सलाउद्दीन अयूबी ने इस सिलसिले में कहा था आई वॉर्न यू अगेंस्ट शेडिंग ब्लड इंडल्जिंग इन इट एंड मेकिंग अ हैबिट फॉर इट फॉर द ब्लड नेवर स्लीप्स अगर आप किसी का खून ये मैं कश्मीर के हवाले से ये बात करती हूँ कि जिन लोगों का खून बहता है या जिनके अजीज़ो अकारब मरते हैं वो उनकी नस्लें भी उस चीज़ को नहीं आप इमेजिन कीजिएगा किसी का बाप भाई बेटा चला गया तो उस माँ की ज़िंदगी का मकसद क्या है